नमस्कार भारत, आज है 21 फरवरी दिन मंगलवार और मैं हूँ अपूर्व कृष्ण। उत्तर प्रदेश में थम जाएगा आज चौथे दौर का चुनाव प्रचार। राजनेताओं के सियासी हमलों में अब जुड़ा एक नया हथियार।
बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं।
मुंबई नगर निगम पर कब्जे के लिए आज आमने सामने होंगी पुरानी सहयोगी भाजपा और शिवसेना। क्यों है खास मुंबई का मुकाबला?
मुंबई का जो बजट है वो कम से कम 16 या 17 राज्यों का जो अर्थसंकल्प होता है उससे भी बड़ा है। मुंबई कंट्रोल में होती है, पूरी कैपिटलिस्ट लॉबी आपके साथ में रहती है।
एक अभिनेत्री के साथ दुर्व्यवहार के मामले पर केरल में आक्रोश और मुलाकात कुछ कश्मीरी पंडितों से जिन्होंने मुश्किलों के बाद भी नहीं छोड़ा अपना घर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। गुरुवार 23 फरवरी को राज्य के 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती समेत कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए एचआर मैकमास्टर का नाम दिया है। ट्रंप ने कहा है कि मैकमास्टर अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं। उनका सेना में बड़ा सम्मान है। वो उन चार उम्मीदवारों में से एक थे जिन्हें माइकल फिन की जगह चुनना था। माइकल फिन ने एक महीने से भी कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जनरल मैकमास्टर 54 साल के हैं। अपने फ्लोरिडा के पाम बीच के घर से ही ट्रंप ने मैकमास्टर के नाम का ऐलान किया।
So I just wanted to announce, we've been working all weekend, very diligently, very hard.
मैं घोषणा करना चाहता हूं कि हम सभी ने सप्ताह अंत तक काम किया, बहुत लगन से, बहुत मुश्किल से। जनरल एचआर मैकमास्टर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। वो एक अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं और जबरदस्त अनुभवी हैं। मैंने पिछले दो दिनों में काफी कुछ देखा और सुना। उनकी सेना में बहुत इज्जत है और उनको पाकर हम सम्मानीय महसूस कर रहे हैं। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्वीडन की विदेश मंत्री मार्गट मालस्ट्रोम ने कहा है कि स्वीडन के बारे में गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ उनके राजनयिक लगातार सही और सटीक जानकारी का प्रसार कर रहे हैं। मार्गट का ये बयान ट्रंप के शनिवार के उस भाषण के बाद आया है जिसमें उन्होंने एक दिन पहले स्वीडन में किसी चरमपंथी हमले की बात कही थी। ट्रंप के बयान पर स्वीडन ने अमरीका से जवाब मांगा था कि अमरीकी राष्ट्रपति किस घटना का जिक्र कर रहे हैं। ट्रंप ने खुद ट्वीट कर कहा था कि उन्होंने स्वीडन में बढ़ते अपराध पर फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के आधार पर बयान दिया था। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत विताली चर्किन की न्यूयॉर्क में काम के दौरान मृत्यु हो गई। वो 2006 से संयुक्त राष्ट्र में राजदूत थे। बीबीसी संवाददाता के अनुसार वो एक अहम शख्सियत थे। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मरिया जखारोवा ने एक रूसी टीवी को दिए इंटरव्यू में चर्किन की मौत को शोकपूर्ण घटना बताते हुए कहा, विताली इवोनोविच चर्किन की मृत्यु हो गई है। यह हादसा उनके 65वें जन्मदिन से सिर्फ एक दिन पहले हुआ। यह हानि नहीं है, हमारे विभाग और रूसी कूटनीति के लिए एक त्रासदी है। वो कोई आम शख्सियत नहीं थे, वो एक महान पेशेवर व्यक्ति थे। वो हर काम दिल से करते थे। ये थे मरिया जखारोवा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नेपाल सरकार ने ऐलान किया है कि लंबे समय से अटके हुए स्थानीय चुनाव मई में होंगे। नेपाल में दो दशकों बाद पहली बार इस तरह के चुनाव होंगे। मंत्रिमंडल ने तय किया है कि गांव और शहरों में एक ही दिन में चुनाव करवाए जाएंगे। दक्षिणी नेपाल में जातीय गुटों ने मतदान को बाधित करने की धमकी दी है। उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले संविधान में संशोधन की मांग की है। नेपाल में इससे पहले स्थानीय चुनाव 1997 में हुए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख जैद राद अल हुसैन ने कहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को सशस्त्र बलों द्वारा अत्याचार की खबरों की जांच करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का कहना है कि ये दस्तावेजों में दर्ज है कि कसाई केंद्रीय प्रांत जहां कांगो सेना मिलितिया समूह से लड़ रही है, वहां जुलाई से अब तक 280 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। जैद राद ने कहा कि वहां बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। वहीं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार ने उस वीडियो को देखने की अंतर्राष्ट्रीय मांग को खारिज कर दिया जिसमें सेना निहत्ते पुरुषों और महिलाओं पर हमला करती नजर आ रही है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चौथे दौर के चुनाव का प्रचार आज खत्म हो जाएगा। इस दौर में परसों 53 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मुकाबला कड़ा है, जिसकी झलक चुनाव प्रचार में भी लगातार दिख रही है, जहां एक दूसरे को कटघरे में खड़े करते नेता निजी हमले करने से भी नहीं कतरा रहे हैं। अब तक के चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग पर वात्सल्य राय की रिपोर्ट।
अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा।
अभिनेता अमिताभ बच्चन ने गुजरात वाइल्ड एस सेंचुरी की तारीफ में जब ये लाइनें बोली होंगी तो शायद ही सोचा हो कि ये बात यहाँ से निकलकर सीधे यूपी चुनाव में सुनाई देगी। जरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सुनिए।
एक गधे का विज्ञापन आता है, बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं।
दरअसल अखिलेश भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रचार के दौरान लगाए जा रहे इस आरोप का जवाब दे रहे थे कि काम बोलता है का नारा देने वाली यूपी सरकार का दावा खोखला है। मंच से ही अखिलेश ने अमिताभ बच्चन से गुजारिश भी कर दी,
हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए।
उत्तर प्रदेश चुनाव पर नजर रखने वाले जानते हैं कि वार और पलटवार का ये सिलसिला नया नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव में ये मुकाबला तब से जारी है जब से प्रचार शुरू हुआ है।
इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहाँ के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं, कई इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ने जाए बहने जाए।
अखिलेश यादव ने जवाब देने में देर नहीं की,
कहा कि आंधी चल रही है बीजेपी की, हमें तो कहीं हवा तक नहीं दिखाई दे रही बीजेपी की।
प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए स्कैम की फुल फॉर्म बताई।
स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी स्कैम के नए अर्थ के साथ सामने आ गए।
इस देश को भी स्कैम से बचाना है, सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी साहब।
सियासी मैदान में जारी इस जुबानी जंग में प्रधानमंत्री और दूसरे किरदारों के बीच भी टक्कर हो रही है। मसलन मोदी ने कल एक रैली में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर निशाना साधा।
बीएसपी का नाम ही बदल गया है, बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई।
मायावती ने भी मोदी को लगभग उसी अंदाज में जवाब दिया।
जब इनको जुमलेबाजी का जवाब जैसे को तैसे मिलेगा तो जुमलेबाजी करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भूल जाएंगे। ही इज नेगेटिव दलित मैन।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी गठबंधन के पक्ष में प्रचार करने उतरी तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर सवाल उठाया।
जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माय बाप है, मेरा माय बाप है।
प्रियंका गांधी ने इस बयान का जिक्र करते हुए कहा,
क्या उत्तर प्रदेश को गधा से किसी को गोद लेने की जरूरत है?
हालांकि जुबानी जंग का मुख्य मुकाबला अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी के बीच ही हो रहा है। काम पर सवाल सिर्फ मोदी ही नहीं उठा रहे हैं, अखिलेश भी केंद्र सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।
रेडियो पर, टीवी पे मन की बात, और हम समाजवादी लोग कह रहे हैं बताओ काम की बात कब होगी?
अरे जब 2019 का चुनाव आएगा ये मोदी सामने से आकर के हिसाब देगा, सामने से।
हालांकि बयानों की इस लड़ाई को गौर से देख रहे उत्तर प्रदेश के वोटर ये सवाल जरूर पूछ रहे होंगे कि ये नेता उनके मतलब की बात पर फोकस क्यों नहीं करते हैं।
वात्सल्य राय की रिपोर्ट। और अब रुख करते हैं सीधे यूपी का, जहां सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, लगभग एक महीने लंबा चुनाव है यूपी का और अब चौथे चरण का चुनाव आने वाला है, तो मतलब समझिए कि इंटरवल के नज़दीक पहुंच चुका है चुनाव। तो उत्साह कहीं नज़र आ रहा है जमीन पर या लोग ऊब चुके हैं एक ही तरह की बात सुन सुनकर?
जी, ये बहुत दिलचस्प सवाल किया आपने अपूर्व, कि इंटरवल का समय आ चुका है और अगर आप सच पूछिए तो ज्यादातर लोग जो है वो वाकई में इस बात से थोड़ा अब ऊबते लग रहे हैं कि ये चुनाव थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। हालांकि एक दो चीजें जो उसको थोड़ा सा दिलचस्प बनाए हुए हैं वो अभी हमने जो इस रिपोर्ट में देखा कि जो जुमलेबाजी चल रही है नेताओं के बीच में, कि मतलब अगर इसी तरह के बयान जो है अगर हम ये बिना हटा के कहें कि चुनाव चल रहा है तो लगेगा वाकई में किसी दंगल में जो है नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन चीजों से जो है दिलचस्पी थोड़ी बहुत बनी हुई है वरना जो रियल मुद्दे हैं, जो असल बातें हैं, उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था। अब मिसाल के तौर पर कल मैं बनारस से सुल्तानपुर पहुंचा हूं, जो 4 घंटे का रास्ता था वो कोई 5.5-6 घंटे का इसलिए हो गया क्योंकि रास्ते में रोड छूटी हुई है। बात हो रही है कि हाईवे बनेगा, 8 लेन बनेगी, लेकिन 1 साल से टूटी रोड है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, सड़क कितनी है, गांवों तक बिजली जा रही है नहीं जा रही, आपस में जुमलेबाजी ज्यादा चल रही है और लोगों को ये लग रहा है कि भाई इस बार चुनाव में मुद्दे दरअसल है ही नहीं ज्यादा। तो इसीलिए नेता लोग आपस में एक दूसरे पर वाद विवाद, जुमलेबाजी, छींटाकशी, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो 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 असल मुद्दे हैं वो शायद कहीं पर दब के रह जा रहे हैं क्योंकि उस तरह से मुद्दे हैं ही नहीं नेताओं।
तो आज भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 4th दौर का, तो आज भी उम्मीद है कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। सुल्तानपुर से बहुत बहुत धन्यवाद नितिन, आपसे चर्चा जारी रहेगी अगले प्रोग्राम्स में। और यूपी से रुख करते हैं अब सीधे महाराष्ट्र का, वहाँ भी आज चुनाव है 10 नगर निगमों के लिए जहाँ वोट डाले जाएंगे, लेकिन सबकी नज़रें टिकी हैं मुंबई नगर निगम पर। ये चुनाव इतना अहम है कि इसे लेकर करीब 3 दशक से गठबंधन की राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच की दरार खाई बन चुकी है। बीजेपी, बीएमसी या बृहन्मुंबई महानगरपालिका पर शिवसेना का 25 साल से जारी कब्जा खत्म करना चाहती है और इसे लेकर दोनों दलों के कई नेताओं की साख दांव पर लगी है। एक रिपोर्ट के साथ अश्विन अघोर।
देश की आर्थिक राजधानी और सबसे अमीर नगर निगम के चुनाव में आज वोट डाले जाएंगे। मुंबई नगर निगम पर कब्जा करने के लिए शिवसेना तथा भाजपा में कड़ी जंग छिड़ी है। प्रचार के दौरान शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भाजपा नेताओं की जमकर आलोचना की। नगर निगम चुनाव में गठबंधन तोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे ने यह भी धमकी दे डाली कि उनके पार्टी के मंत्री महाराष्ट्र सरकार से भी इस्तीफा दे सकते हैं। वर्ष 2014 में हुए लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली भारी जीत के बाद भाजपा नेता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है। भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा की 288 में से 122 सीटें जीती और इसके चलते उसने अकेले ही मुंबई नगर निगम जीतने की रणनीति तैयार कर ली। देश की सबसे अमीर नगर निगम जीतने की इस होड़ पर वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर का कहना है,
जब बीजेपी पावर में है दिल्ली में तो उनको ऐसा लगता है कि जो इंडिया का कमर्शियल कैपिटल है वो कमर्शियल कैपिटल शिवसेना के हाथ रखना, मतलब उनके पार्टनर के हाथ रखना, ये उनका नुकसान है। जब दिल्ली हाथ में है तो मुंबई भी हाथ में रखनी चाहिए। मुंबई का जो बजट है वो कम से कम 16 या 17 राज्यों का जो अर्थसंकल्प होता है उससे भी बड़ा है। जब मुंबई कंट्रोल में होती है तब आपको पूरी कैपिटलिस्ट लॉबी आपके साथ में रहती है।
कहने को तो शिवसेना ने सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा से गठबंधन तोड़ा, लेकिन असल बात यह है कि भाजपा के बढ़ते हौसलों के चलते मुंबई नगर निगम हाथ से छूटने का डर उसे सता रहा था। 26 जनवरी को गठबंधन तोड़ने का ऐलान करते हुए शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया था कि वह किसी भी हालत में मुंबई नगर निगम हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच घमासान शुरू हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया था। मुंबई नगर निगम के चुनाव इस बार शिवसेना और भाजपा के बीच ही लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का मुंबई में कुछ खास अस्तित्व नहीं है। मुंबई कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई के चलते काफी कमजोर नजर आ रही है। संजय निरुपम से मतभेद के चलते दिग्गज नेता या तो प्रचार नहीं कर रहे या तो पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन चुनावों के नतीजे 23 फरवरी को आएंगे। मुंबई से बीबीसी हिंदी के लिए अश्विन अघोर।
चुनावों की चर्चा भारत के आज जो अखबार छपे हैं उनमें भी है और उन पर नजर डाली है हमारे सहयोगी तृप्ति श्रीवास्तव ने अखबारों की समीक्षा के साथ। तृप्ति श्रीवास्तव
जी, बिल्कुल अपूर्व जी, और अखबारों में हर जगह चुनावों की खबरें छाई हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान कल हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो जुबानी जंग हुई थी उसको काफ़ी अहमियत दी है और अखबार ने लिखा है कि सोमवार को उत्तर प्रदेश में शब्दों की जंग छिड़ गई, जहाँ गुरुवार को 4th चरण का मतदान होना है। सभी स्टार प्रचारकों नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव और मायावती ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया, निजी हमले किए और एक दूसरे की नकल उतारी। वहीं इसी अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी लिखा है कि 1984 में जो सिख विरोधी दंगों हुए थे उनमें से 80% से ज्यादा केस बंद हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में केंद्रीय सरकार की बनाई एसआईटी पर निगरानी रखने के लिए दूसरी पैनल चाहता है। अखबार लिखता है कि 1984 के दंगों के 200 93 में से 240 मामले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बंद कर दिए हैं। इसे लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया कि वो इसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी चाहता है जो मामले की जांच और परीक्षण करे, क्योंकि इन मामलों से सारे देश का सरोकार है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने सीबीआई के जो पूर्व प्रमुख अमर प्रताप सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप और उनके घर छापेमारी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, और सीबीआई ने विवादित मांस निर्यातक मोइन कुरैशी की कथित तौर पर सहायता करने के आरोप में सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। द टेलीग्राफ ने अपने पहले पन्ने पर बंगाल के अनाथालय के बच्चों को अमरीका में बेचे जाने की खबर को छापा है, और खबर में लिखा गया है कि जलपाईगुड़ी के अनाथ आश्रम में 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है और इन पर अनाथ आश्रम में बच्चों को भारत के अलावा अमरीका, स्पेन और फ्रांस के जोड़ों को बेचने का आरोप है। हिंदी अखबारों की बात करें तो हिंदी अखबारों में हिंदुस्तान टाइम्स ने आईपीएल की नीलामी में जो छिड़ी जंग है उसको प्रमुखता से छापा है। हालांकि सभी अखबारों ने इसे काफी प्रमुखता दी है, और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को पुणे टीम ने 14.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जो आईपीएल के सभी सीजन के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं। अखबार ने आईपीएल में पहली बार अफगानिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नबी और राशिद खान को खरीदे जाने की खबर को अहमियत दी है। वहीं जनसत्ता ने हेडलाइन लिखी है कि मार्च में फिर से शुरू होगी बैंक खातों की पड़ताल, आयकर विभाग अपने अभियान ऑपरेशन क्लीन मनी का दूसरा चरण अगले महीने शुरू करेगा, और इस चरण में 5 लाख रुपए से कम की एक बार की जमाओं को फिलहाल एक तरफ रखे जाने की संभावना है, और दोबारा यह अभियान शुरू होने वाला है।
जी तृप्ति श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद अखबारों के मुख्य समाचारों से, आज छपे अखबारों के मुख्य सुर्खियों से हमें अवगत कराने के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्ज पर।
मलयालम फिल्मों की एक जानी मानी अभिनेत्री के साथ कथित यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद केरल में फिल्म बिरादरी का गुस्सा फूट पड़ा है। कल कोची में विरोध प्रदर्शन हुए। उस अभिनेत्री का आरोप है कि शुक्रवार की रात कोची में एक फिल्म की डबिंग निपटाकर वे त्रिचूर लौट रही थीं, जब चलती गाड़ी में 2 ड्राइवरों समेत कुछ लोगों ने उनका यौन शोषण किया। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं कोची से प्रगीत परमेश्वरन।
इस मामले को लेकर मलयालम फिल्म जगत से जुड़े लोग और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। मशहूर अभिनेत्री मंजू वारियर ने ये कहा,
ये केवल उसके जैसे मशहूर लोगों के बारे में ही नहीं है, ये किसी भी महिला के साथ हो सकता है। चाहे कोई भी वक्त हो, हमें काम करना होता है और हमें सुरक्षित महसूस होना चाहिए। एक महिला के तौर पर मैं आजादी और समाज में सम्मान की मांग करती हूँ।
इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है, जबकि मुख्य आरोपी अब तक फरार है। अब तक मिली खबरों के मुताबिक अभिनेत्री को उनके ड्राइवर ने ही अगवा किया था। घटना में शामिल 3 दूसरे लोग अब भी फरार हैं। इधर सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं, किसी ऐसी घटनाओं के बारे में पीड़ितों के खुलकर सामने नहीं आने से अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पार्वती ने कहा,
पीपल डू नॉट टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स।
लोग अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं करते, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि यहाँ महिला जब भी लोगों के सामने अपनी आवाज़ उठाती है और कहती है कि मुझ पर हमला हुआ या मैं परेशानी में हूँ, तो लोग उसकी निजी जिंदगी को परखने लगते हैं, किसके साथ रिश्ता था, नैतिकता के आधार पर उसे शिकायत दर्ज करवानी चाहिए या नहीं, कितने आदमियों के साथ उसके दोस्ताना रिश्ते थे, तो वो नैतिकता के आधार पर शिकायत या मुकदमा दर्ज नहीं करवाती।
कई लोग इस मामले में बॉलीवुड की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आने से भी हैरान हैं। प्रगीत परमेश्वरन, बीबीसी कोची।
भारत प्रशासित कश्मीर में 90 के दशक में भड़के चरमपंथ के बाद बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा, मगर पंडितों के समुदाय का एक छोटा सा तबका ऐसा भी था जिसने कश्मीर नहीं छोड़ा। कैसे रह रहे हैं वहां पंडित समुदाय के वो लोग, और क्या कश्मीर छोड़ चुके कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए कुछ हो भी रहा है? श्रीनगर से माजिद जहांगीर।
श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर जिला अनंतनाग के मटन इलाके में अपने बोसीदा मकान में अपने माता पिता पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे 38 वर्ष के कश्मीरी पंडित विनोद फोतेदार उन कश्मीरी पंडितों में से एक परिवार है जिन्होंने कभी कश्मीर नहीं छोड़ा। विनोद उस समय महज 15 वर्ष के थे जब वर्ष 1990 में लाखों कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से विस्थापन किया। विनोद को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के क्यों जा रहे हैं।
उस टाइम तो हम छोटे ही थे, ये तो खुदा का भगवान का चाहना था कि हम यहाँ बैठे, तो फिर क्यों छोड़ दे, हमारा देश है, हमारा कश्मीर है।
विनोद की 65 वर्षीय माँ रत्ना जी कहती हैं कि बीते 28 वर्षों में वो कश्मीर में अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ बहुत मोहब्बत से रहे। अट्ठाईस वर्षों के दौरान हमारे मुसलमान पड़ोसियों ने हमारा बहुत ख्याल रखा और हम हमेशा मोहब्बत के साथ रहे। ये थे रत्ना जी के शब्द। विनोद और रत्ना जी का कहना है कि जब भी उनके यहाँ कोई मरता है या फिर किसी की शादी होती है या फिर कोई त्यौहार होता है तो उन्हें अपने रिश्तेदारों की बहुत याद आती है।
हम यहाँ 7-8 फैमिलियाँ हैं, तो जब कोई मरता है, कोई फंक्शन होती है, तो मगर प्रॉब्लम होती है, उस टाइम प्रॉब्लम होती है। देखो हमारे जो राइचुअल्स हैं हम ठीक तरह से करते हैं, शादी भी ठीक तरह से करते हैं, मगर हमारे सब रिश्तेदार बाहर हैं।
रत्ना जी सरकार के रवैये से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं।
ये मनीष भी बैठो सीतन आदि के हुकूमत है
इन वर्षों में कोई भी सरकार हमारे पास नहीं आई, हमें पूछा तक भी नहीं कि हम है भी या नहीं। ये थे रत्ना जी के शब्द। 1990 में कश्मीर में हथियार बंद आंदोलन शुरू हुआ तो कश्मीर से लाखों कश्मीरी पंडित भागकर भारत के शहरों में पनाह लेने लगे। कश्मीरी पंडितों के कश्मीर छोड़ने के बाद से ही आज तक ये बहस चल रही है कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर लौटकर अपने घरों में रहेंगे या फिर अलग कॉलोनियों में। कश्मीर में वापस पंडितों को बसाने के लिए अगरचे कश्मीर के अलगाववादी इसका विरोध कर रहे हैं, ताहम अलगाववादियों का ये भी कहना है कि कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित वापस आकर अपनी अपनी जगहों पर फिर से आबाद हो जाएं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी गुट के प्रवक्ता अयाज अकबर बताते हैं,
उनके लिए अलग सेपरेट कॉलोनीज की हम हर सूरत में मुखालफत करेंगे।
विस्थापित हुए कुछ कश्मीरी पंडितों का ख्याल है कि कश्मीर में पंडितों को वापस लाने के लिए जरूरी है कि उनको कुछ समय के लिए अलग ट्रांजिट कैंपस में बसाया जाए। हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर सभी सियासी जमातों ने एक प्रस्ताव पास कर इस बात पर सहमति जताई कि पंडितों की घर वापसी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार ने भी कश्मीर से विस्थापित हुए लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में अलग कॉलोनियों में बसाने से इनकार किया है।
कश्मीरी पंडितों के बारे में ये थी श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत। पिछले सप्ताह भारत में शादियों में शान और शौकत दिखाने के नाम पर फिजूल खर्ची को बंद कराने के इरादे से एक कानून बनाने की कोशिश शुरू हुई। बिहार के सांसद पप्पू यादव की सांसद पत्नी रंजीत कुमार ने कहा कि वे एक विधेयक लाएंगी जिसमें सुझाया जाएगा कि अगर कोई परिवार शादी पर 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करता है तो उसे इसकी 10% राशि गरीब परिवार की लड़कियों की शादी में देनी होगी। पाकिस्तान में बीबीसी संवाददाता वसतुल्ला खान को भी इस खबर ने कुछ याद दिलाया।
ये खबर पढ़ के खुशी हुई कि अब पाकिस्तानी नेशनल असेंबली की तरह भारतीय लोकसभा भी शादी ब्याह के नाम पे होने वाली फजूल खर्ची पे रोक टोक का कानून बनाने पे गौर कर रही है और लोकसभा का अगला सेशन कांग्रेस की मेंबर रंजीत रंजन के इस बिल पे गौर करेगा कि शादी के मेहमानों और खाने की डिशों की तादाद पे रोक लगाई जाए। अगर किसी शादी पे 5 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हो तो उसे सरकार के सामने डिक्लेयर किया जाए ताकि इस रकम का 10% किसी गरीब लड़की की शादी के फंड में जमा हो सके। क्या किसी को याद है कि 1961 में इसी लोकसभा ने दहेज पे पाबंदी का कानून भी मंजूर किया था जिसका अपमान करने की सज़ा 5 साल कैद और 15,000 रुपये तक जुर्माना था। कोई बताएगा कि इस कानून के लागू होने के बाद पिछले 56 बरस में कितनी लड़कियां कम दहेज लाने पे मर गईं या मार दी गईं या घरों से निकाल दी गईं? वो लड़कियां और उनकी कहानियां कहाँ हैं? اسی طرح پاکستان میں بھی 1976 میں دہیج اور شادی بیاہ کے خرچوں پہ پابندی کا قانون بڑے زور و شور سے منظور ہوا۔ اس قانون کے انوسار کوئی مہمان 100 روپے سے زیادہ کا تحفہ نہیں دے سکتا تھا، شادی پہ 5,000 روپے سے زیادہ کا خرچہ نہیں ہو سکتا تھا، شادی کے کھانے پہ 2,500 روپے سے زیادہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ راشٹرپتی، پردھان منتری، کیبنٹ منسٹرز اور پارلیمنٹ کے ممبرز کو مناہی کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے گھر کی شادیوں پہ کوئی گفٹ قبول نہیں کر سکتے۔ اس قانون کو توڑنے کی سزا 6 مہینے تک قید اور 10,000 روپے تک جرمانہ تھا۔ مگر قانون بنانے والے جوش میں بھول گئے کہ ہر سال کی مہنگائی کے حساب سے شادی کے خرچے میں 5 یا 10% اضافے کی کھڑکی رکھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ یہ قانون اپنی موت آپ مر گیا، مگر آج بھی اس کی چتا سرکاری پستکوں میں محفوظ ہے۔ پاکستان کے ہر پرانت کی سرکار شادیوں میں کھانے پر بالکل پابندی یا ون ڈش کا قانون بنا چکی ہے۔ کچھ دن عمل ہوتا ہے مگر یار لوگ شارٹ کٹ نکال لیتے ہیں، جیسے ون ڈش کا جنتا نے یہ مطلب اپنے آپ ہی لے لیا کہ ایک تو نمکین ڈش ہوگی، ایک میٹھی ہوگی، ایک بیمار لوگوں کے لیے ہوگی، ایک شوگر فری ہوگی اور ایک ڈش بچوں کے لیے ہوگی، اور ایک ان بزرگوں کے لیے جن کے دانت نہیں ہیں۔ لو ہو گیا عمل قانون پہ۔ چنانچہ پنجاب پرانت کی حکومت نے تنگ آ کے زیرو ڈش کا قانون لاگو کر دیا، یعنی باراتیوں کو صرف شربت پیش کیا جائے گا۔ اس کا توڑ یہ نکالا گیا کہ پہلے سے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ سے ڈیل کر لی جاتی، باراتیوں کو کھانے کے ٹوکن بڑھ جاتے اور وہ اس ریسٹورنٹ میں ٹوکن دکھا کے کھانا کھا کے ڈکار لیتے ہوئے واپس بارات میں آ جاتے۔ بات یہ ہے کہ سارا کھیل سماجک رویوں کا ہے۔ جن سماجوں میں شادی سادگی سے اور بنا دہیج ہوتی ہے وہاں یہ سب بغیر کسی قانون کے ہو رہا ہے، اور جہاں دکھاوے کا چلن ہے وہاں قانون بھی دکھاوا بن جاتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا پالن ہم ہندوستانی پاکستانی چناؤ پہ خرچے کے قانون کا کرتے ہیں، اتنا ہی ہم شادی کے خرچوں کے قانون کا بھی کریں گے۔ سنو غور سے دنیا والو، بری نظر نہ ہم پہ ڈالو، چاہے جتنا زور لگا لو، سب سے آگے ہوں گے ہندوستانی۔ یہ گیت تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔
اور اب وقت ہے کھیل سماچاروں کا۔
کھیل کی دنیا کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سمیرن پریت کور۔ بنگلورو میں آئی پی ایل 2017 کے لیے کھلاڑیوں کی نیلامی ہوئی۔ رائزنگ پونے سپر جائنٹس نے بین سٹوکس کو 14.5 کروڑ روپے میں خریدا۔ جہاں انگلینڈ کے بین سٹوکس اب کھیلیں گے رائزنگ پونے سپر جائنٹس کے لیے، وہیں انگلینڈ کے ہی تائمل ملز کھیلیں گے رائل چیلنجرز بنگلور کے لیے۔ بھارت کے کرن شرما رہے بھارت کے سب سے مہنگے کھلاڑی۔ کرن شرما جہاں اب کھیلیں گے ممبئی انڈینز کے لیے، وہیں ٹی ناٹراجن کو کنگز 11 پنجاب نے 3 کروڑ روپے میں خریدا۔ کرن شرما کہتے ہیں کہ جب وہ 10-11 سال کے تھے تب سے کرکٹ سے ناتا جڑا۔
ڈیبیو کیا انڈیا کے لیے اگینسٹ انگلینڈ T20 میں 2015 میں، وہ پراؤڈ مومنٹ تھا کہ آپ جب بھی کنٹری کے لیے ریپرزینٹ کرتے ہو۔ تو اسی سال میں نے T20 ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں انڈیا کو ریپرزینٹ کیا، تو سب سے بڑا پراؤڈ فیلنگ وہی تھا کہ آپ جب ٹیسٹ کیپ پہنتے ہو، ون ڈے کیپ پہنتے ہو، تو بہت بڑا پراؤڈ فیلنگ تھا میرے لیے۔
افغانستان کے کرکٹرز محمد نبی اور راشید خان نے اتہاس رچا۔ آئی پی ایل میں چنے جانے والے یہ افغانستان کے پہلے کرکٹرز ہیں۔ ورشٹھ کھیل پترکار وجے لوک پلی کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے اور بھی افغانستان کے کھلاڑی آئیں گے۔
سر، افغانستان کے 2 پلیئر آگے ہیں، اگلے سال آپ امید رکھ سکتے ہیں ان کے وہاں سے اور پلیئرز آئیں گے، کیونکہ T20 کھیلنے کے لیے وہ پرفیکٹ کھلاڑی ہیں۔ جو آئی سی سی کا جو ایک مہم تھی کہ اور زیادہ سے زیادہ ٹیموں کو جوڑا جائے انتراشٹری کرکٹ میں بڑے سر پہ کھیلنے کے لیے، کامیاب رہی اور کم سے کم 2 کھلاڑی ان کے آئی پی ایل میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔
کل یعنی 22 فروری کو مقابلہ ہوگا کرائسٹ چرچ میں ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کے بیچ۔ پہلا انتراشٹری ایک دیوسیہ میچ ساؤتھ افریقہ نے اپنے نام کیا تھا۔ وہیں دوسری طرف تیسرا T20 میچ ہوگا ایڈیلیڈ میں شری لنکا اور آسٹریلیا کے بیچ۔ پہلے 2 T20 میچ شری لنکا نے اپنے نام کیے۔ اسپورٹس کی دنیا سے فی الحال اتنا ہی۔
اور سبھا سماپتی سے پہلے مکھیہ سماچار۔
بی بی سی سماچار۔ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے نئے راشٹریہ سرکشا صلاح کار کے لیے ایچ آر میک ماسٹر کا نام دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میک ماسٹر ادبھت پرتیبھا کے دھنی اور انوبھوی ہیں، ان کا سینا میں سمان ہے۔ سویڈن کی ودیش منتری مارگٹ ملسٹروم نے کہا کہ سویڈن کے بارے میں غلط جانکاری پھیلانے کے خلاف ان کے راجنیک لگاتار صحیح اور سٹیک جانکاری کا پرسار کر رہے ہیں۔ संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत विताली चर्किन के न्यूयॉर्क में काम के दौरान मृत्यु हो गई। वो 2006 से संयुक्त राष्ट्र में राजदूत थे। नेपाल सरकार ने ऐलान किया है कि लंबे समय से अटके हुए स्थानीय चुनाव मई में होंगे। नेपाल में दो दशकों बाद पहली बार इस तरह के चुनाव होंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख ज़ैद राद अल हुसैन ने कहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को सशस्त्र बलों द्वारा अत्याचार की खबरों की जाँच करनी चाहिए। बीबीसी समाचार।
तो मुख्य समाचारों के साथ ही इस सभा का समय अब समाप्त होता है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होंगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने। अपूर्व कृष्ण को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।